नतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाने कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमन्पेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो गिरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मीमांसि तवैवास्मि न युवां तया विना इति विज्ञाय राधे तं भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै छित्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दे सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद शिष्यमन भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु विश्व में कृष्ण कीर्तन का प्रचार करने वाले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरणों में भी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात हमारे मान्यवर पुजारी जी, हमारे इस मंदिर के व्यवस्थापक सज्जनों, बेटियों और माताओं सबके लिए मेरा यथा योग्य आशीर्वाद भी, प्रणाम भी, सब कुछ हमारे लिए यथा योग्य। जैसा कि मैंने कल कहा था कि कृष्ण कथा के बिना हमारा कल्याण नहीं है, इसे सभी भगवत अवतारों के रूप समझ लीजिए। विशेष करके सनातन धर्म के कुछ पहलुओं पर मैं विहंगम दृष्टि डालना चाहता हूँ। संक्षेप में सनातन धर्म के संबंध में बतलाकर भगवत कथा कुछ बतलाऊंगा। यूँ तो भगवत कथा हजारों जन्म में पूरा नहीं होती, तभी संक्षेप में कहने की चेष्टा करें। आज नहीं लगा है। हो रहा है। सनातन कहने से आप लोग यह समझेंगे, खूब सावधानी के साथ में सुनेंगे। सनातन मैंने होता है जिसका आदि अंत नहीं है, जिसकी स्थिति नित्यकाल है, जिसका कोई चेंज नहीं है, उसको सनातन कहते हैं। यह संसार में जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसमें ऐसी कोई भी सनातन वस्तु नहीं है, सभी ध्वंसशील और परिवर्तनशील है। इन आंखों से जो देखा जाता, क्योंकि आंखें ही स्वयं ध्वंसशील हैं, ये नित्य नहीं है। इस शरीर के अंदर विश्व में सर्वत्र दो वस्तुएं हैं जो नित्य सनातन हैं, जिनका कभी आदि अंत नहीं है। वो दो वस्तुएं हैं, एक है परब्रह्म साक्षात भगवत तत्व, और दूसरा उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल नित्य सेवक जीव, एक जीवात्मा और एक दूसरा परमात्मा। ये दो वस्तुएं सनातन नित्य, जिनका कभी भी परिवर्तनशील नहीं है, ध्वंस नहीं है, ये वस्तु दो है। नित्य वस्तुओं में परस्पर जो प्रेम होता है उसी को नित्य धर्म या सनातन धर्म कहते हैं। शरीर से प्रेम नहीं हो सकता है नित्य सनातन, शरीर ही नित्य नहीं है। इसलिए शास्त्रों में बतलाया गया, अर्जुन को कृष्ण ने बतलाया कृपा करके, अच्छेद्यो अहम अद्दायो अहम अशोष्यम एव च नित्य सर्वगत स्थान अचलो सनातन। शरीर में जो भी आत्माएं हैं एक नहीं है, जीव अनेक एक श्रीकंता, एक एक शरीर में एक एक जीव जो है वह अलग अलग है, एक नहीं है। एक के मुक्त होने से दूसरा मुक्त नहीं हो जाएगा, इसलिए अलग अलग आत्मा ये सनातन है। स्वरूपतः विभिन्न शरीरों में आकर के दूसरे दूसरे रूपों में ये दिख पड़ता है, किंतु है ये सनातन तत्व। और परम सनातन कौन है? ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति में बतला रहे हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कुशाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये पूर्ण ब्रह्म है। कौन? नंद के आंगन में जो खेलने वाले हैं, खुटरुओं पर चलने वाले हैं, यशोदा जी जिनकी कान मल रही हैं, रो रहे हैं यशोदा के प्रेममयी भय से, ये परब्रह्म है। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कुशाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये छोटा सा बच्चा ये कौन है? परब्रह्म। धन्य है नंदगांव के लोग जिनके ये मित्र हैं, सखा हैं, किसी के प्राण प्रियतम हैं, किसी के कुछ लगते हैं। इसलिए वो कृष्ण जो है परब्रह्म है, राम है परब्रह्म है, सब जगह रमण करते हैं, इसलिए योगियों के हृदय में भी रमण करते हैं, सर्वत्र रमण करते हैं, इसलिए ये परब्रह्म है। ऐसा मत समझिए कि कृष्ण 16 कलाओं के हैं इसलिए वो श्रेष्ठ हैं, और रामचंद्र जी हैं 12 कला से 12 कला से। सूरज सूर्यवंश में आने से सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, उसी में वो पूर्ण होते हैं, और चंद्र की 16 कलाएं होती हैं, इसलिए एक ही तत्व है, इसलिए इनमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है, प्रकाश है बस। रस के विचार से कुछ तारतम्य या वैशिष्ट है, इसलिए दोनों एक ही हैं। इसलिए जीव का भगवान के प्रति जो प्रीति या प्रेम है, यही नित्य और सनातन धर्म है। जो लोग साधारण चीजों को बाहरी रूप में सनातन धर्म कहते हैं वो नहीं। जैसे महाराज हरिश्चंद्र सत्य के लिए अपने को बेच दिया, अपनी स्त्री को भी बेच दिया, अपने बच्चे को बेच दिया, और डोम बन करके डोम के यहां श्मशान घाट की रखवाली कर सत्य के लिए। ये सनातन धर्म का बाहरी अंग है, एक अतिथि की रक्षा करने के लिए, एक शरणागत कबूतर की रक्षा के लिए। वो दधीची जी ने, शिवी ने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर करके तराजू पर रख करके तौल करके देना चाहा बाज को, बाज माने इंद्र, देना चाहा, दिया। ये साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है, ये सनातन धर्म का बाहरी रूप है। किसी समय वृत्रासुर के उत्पात से सभी लोग डर कर दधीची ऋषि के यहां गए, महाराज अपना यह हाड़ दे दीजिए, हड्डी दे दीजिए, इससे वज्र बनेगा और इससे वृत्रासुर का वध हो सकता, अन्यथा वध नहीं होगा। तो हंसने लगे, अरे देवताओं साक्षियों, अपने लिए हमें मारता है, किंतु दिया अपने सारे अंगों में दधी और बूरा लगा दिया और गाय चाट गई जीवित रहते हुए, और उसे वज्र बना, उससे वृत्रासुर का वध हुआ। ये सनातन धर्म का बाहरी स्वरूप, भीतरी स्वरूप क्या है, इसी को रामायण में, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण इत्यादि में, विशेष करके श्रीमद् भागवत में बतलाया। तुलसी की रामायण क्या है, समस्त वेदों का सार किंतु श्रीमद् भागवत का अनुवाद है। तुलसीदास जी बड़े भारी विद्वान थे शास्त्रों के, उन्होंने भागवत का अनुवाद किया, उनके श्लोकों का अनुवाद हम देखते हैं कि उनकी चौपाइयों में भरा पड़ा है, इसलिए परम आदृत है वेद से भी अधिक, ये प्रमाणित। अभी हमारे पुजारी जी कीर्तन कर रहे थे, वो स्तव स्तुति रामचंद्र जी, भज भज भाता कंज कंजारुणम इत्यादि बतला रहे, बहुत ही सुंदर। तो उसमें दिखलाया गया है हमारे हृदय में ये जो प्रेम दिखता है वो शरीर का नहीं, इसमें आत्मा है, इसलिए इस आत्मा के धर्म को, जीवों का भगवान के प्रति प्रेम को नित्य शाश्वत सनातन धर्म कहते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं, उसके बाहरी अंगों को ही सनातन धर्म कह लेते हैं, जैसे पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य, स्त्री के प्रति पति का कर्तव्य, पति के प्रति स्त्री का कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, देवताओं के प्रति कर्तव्य, इसको मान लेते हैं सनातन धर्म। हाँ, इसका बाहरी अंग तो जरूर है, किंतु भीतरी अंग नहीं है। भीतरी अंग है भगवान से प्रीति, यही सनातन। इसी को श्रीमद् भागवत में सबसे श्रेष्ठ रूप में गोपियों ने उदाहरण प्रस्तुत किया। गोपियों ने कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया। एक समय की बात है, मीराबाई जी ने तुलसीदास से एक प्रश्न लिख करके पूछा पत्र के माध्यम से, प्रभो मैं क्या करूं, विपत्ति में फंसी हुई हूं, हमारा पति हमारा बड़ा विरोध करता है, घर के सारे लोग विरोध करते हैं, कृष्ण का भजन कीर्तन नहीं करने देते, तरह तरह से मुझे मारने की चेष्टा कर रहे हैं, इस भयंकर परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने उसका उत्तर दिया है, जिनके प्रियन राम बैदेही तजिए कोटि बैरी सम जद्दप परम शनि तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजऊ कंत प्रजबनितन भय जग मंगलकारी। कितना भी कोई प्रिय न हो, पिता हो, माता हो, यहां तक कि गुरु भी, यदि भगवत भजन में वो हमारी सहायता नहीं करता, विरोध करता है, इनको प्रत्याग करना ही हमारा कर्तव्य है।
यद्यपि वो बड़े स्नेही प्रेमी और जो कुछ भी हो, तत्व तो उसको प्रत्याग करो। इसके लिए शास्त्र से उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करके दिखलाया, जिनके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि बैरी सम, कोटि शत्रु के समान, तजिए कोटि बैरी सम, यद्यप परम स्नेही, स्नेह वाला भी हो, छोड़ो उसको यदि भगवान का विरोधी है। तजव पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने क्या किया, अपने पिता का प्रत्याग कर दिया। तजव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भैया रावण को एक माता से उत्पन्न और उसको त्याग कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, तुम सीता जी को हरण कर लाया, राम का विरोध किया, तुमसे हमारा कोई भी संबंध नहीं, छोड़ करके राम के पास में चला गया। बंधु भरत महतारी, बंधु और मैया को कौन छोड़ा, मैया का तो हिंदू धर्म का सनातन धर्म का एक अंग है, माता की सेवा करना, पिता की सेवा करना, मैया वो पिता से भी अधिक हमारी सेवा उन्होंने की है, उनका मैं ऋणी हूं, उनको भी छोड़ो यदि भगवान के विरोधी हैं तो। भरत जी ने अपनी मैया का प्रत्याग कर दिया, तूने राम के विरोध ऐसा किया, जबकि वो अपने मामा के घर से ननिहाल से लौटे, अयोध्या को विधवा की भांति देखा, सभी लोग रो रहे हैं, भरत की अगवानी के लिए, शत्रु अगवानी के लिए उस नगर से कोई नहीं आया, क्या हो गया, राम रहते तो जरूर आते, तो राम तो आए नहीं, पिताजी लाड़ प्यार से आजे 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 तो वो नहीं, किसी प्रकार से सोचा जे वो मेरी मैया के घर में पिताजी मिलेंगे, वहीं पर सभी मिल सकते हैं, वहां गए तो देखा क्या, वो आगे आई दीप का थाल लेकर के, थाल में दीप आरती उतारने के लिए, तो भरत जी ने पूछा, अरे तुमने सफेद कपड़े क्यों पहन लिए, सिर में सिंदूर क्यों नहीं है, पिताजी कहाँ हैं, तो वो तो गोलोक सिधार गए, भैया कहाँ, वो तो वन में गए, सीता कहाँ, लक्ष्मण कहाँ, वो भी वन में गए, किस लिए, तुम्हारे लिए बेटा मैंने किया जो तुम राजगद्दी पर बैठेगा, इसलिए, अच्छा इसलिए राम को भी तुमने यहां से हटा दिया, इसलिए आज से हमारा जो संबंध था माता और पुत्र का वो मैं तोड़ रहा हूं, मैं कभी भी तुम्हें मैया नहीं कहूंगा, तुम भी मुझे पुत्र मत समझना, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, जाओ यदि स्त्री तुम नहीं होती तो तुम्हारा वध कर देता, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, इतने भयंकर। जब रामचंद्र जी लौट करके आए वन से, कितने कठोर, जब लौट करके आए रामचंद्र जी, 11,000 वर्ष राज्य किया हमने कल बतलाया था, उसमें एक दिन कैकेयी मैया को आई राम के पास में, जो बेटे तुम तो मुझे मैया कहते हो, किंतु भरत ने मुझे एक बार भी मैया नहीं कहा जब से तुम वन में गए, मैं चाहती हूं कि एक बार भी मुझे मैया कह दे, किंतु मैया नहीं कहता, तो राम ने कहा जी अच्छा मैं चेष्टा करूंगा जो वो तुम्हें मैया कहे। एक दिन भरत को बड़े लाड प्यार से बुलाया और बोले भैया तुमको आज तक मैंने कोई आदेश नहीं दिया, बिना आदेश का ही सब कुछ करते हो तुम हमारे लिए, आज तुमसे एक हमारा निवेदन है, उसे तुम्हें करना पड़ेगा। भरत जी ने सोचा जी क्या ऐसी बात है जो मुझसे निवेदन इनको करनी पड़ी, सोच करके बोले महारानी कैकेयी को मैया कहने के अतिरिक्त आप जो कुछ कहेंगे मैं कर दूंगा, सब कुछ करूंगा, किंतु महारानी कैकेयी को मैं मैया नहीं कह सकता, इसके अतिरिक्त आप जो कुछ कहेंगे कर। कैकेयी भी रोने लगी, राम भी रोने लगे, ऐसे दृढ़ जिनके न प्रिय न राम वेदी, मैया को भी प्रत्याग किया। विभीषण बंद भरत महतारी बलिगुरु तजव, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का प्रत्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि बलि, अरे महाराज भगवान वामन देव को तुम पृथ्वी का राज्य मत दो, ये 3 पैग जमीन लेने के बदले तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। तू नहीं, जो प्रभु का है यदि वो ले लेंगे तो इसमें आनंद की बात है। तो नहीं माने, उन्होंने कहा जो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा यदि भाई बात नहीं मानेगा, तो ठीक है हमारा सर्वनाश ही अच्छा है। उस गुरु को छोड़ दिया। उनके लिए उनको अंधा होना पड़ा। जब पानी का जब संकल्प कराने लगे, बलि महाराज जी ने कहा जी वामन देव जी आप ही हमारा गुरु तो कराएगा नहीं संकल्प, इसलिए आप ही संकल्प कराइए, ये 3 पग भूमि आपके लिए मैंने दी। तो शुक्राचार्य जी को जो होता है ना गंगा सागर कहते हैं, उसको टुआ भी कहते हैं, उसको और भी क्या क्या कहते हैं, मुसलमान लोग उसी को बधना कहते हैं, पानी निकालने के लिए कमंडलू जैसा उसके ऊपर में छा गए तो वो पानी ना निकले। उस समय में वामन देव जी ने कहा एक सींक लो और उसके अंदर में ऐसे कर दो कुछ रुका हुआ है शायद। तो बलि महाराज जी के उसके ऊपर में शुक्राचार्य जी आच्छादन कर रखा था, तो जहां उनकी आंख थी उन्होंने सीक से खोदा। वामन महाराज ने मंत्र बतलाया और खोदने के साथ ही उनकी एक आंख कानी हो गई। सब मंत्र तंत्रों का विशारद, मुर्दे को भी जिलाने वाले पानी छिड़क करके, ऐसे शुक्राचार्य की 2 आंखों में से 1 आंख फूट गई। सब विषय में पारंगत रहे शुक्राचार्य, किंतु भक्ति के विषय में उनकी एक फूटी हुई है। ऐसे गुरु को प्रत्याग कर दिया जाए जो भगवान के भजन में बाधा देता है, इससे बढ़कर के क्या होगा। और बलि गुरु तजव कंत ब्रज बनितन, और ब्रज की बनिताओं ने गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया सबको, भय जग मंगलकारी, उनका मंगल ही मंगल हुआ। पत्र पढ़ते ही घर बार सब कुछ छोड़ दिया और चल पड़ी वृंदावन, और उसका पति भी उसके पीछे। अब आप कहां जा रहे हैं उनको कुछ मालूम हुआ, उनके पीछे पीछे दौड़े, किंतु फिर घर की तरफ में नहीं लौटी। द्वारका गई वृंदावन होकर के, और द्वारका में जाकर के ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश किया वो, और प्रवेश करते ही देखा गया जी अब है ही नहीं गया, कहां गई, उनके अंगों में समा गई। कल्याण ही कल्याण हुआ, इसलिए सनातन धर्म इसको कहते हैं भगवान के साथ में प्रेम। हम लोग उसी का प्रचार करने के लिए आते हैं। सनातन धर्म प्रचार में या सनातन धर्म में एक बात मुख्य है, वो क्या मुख्य यह है कि व्यास जी ने एक ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ बनाया, सारे वेदों उपनिषदों का सार लेकर। हमारे भारतीय जितने भी मनीषी हैं आचार्य हैं सब ने उसको ग्रहण किया और उसका भाष्य और टीका करने की चेष्टा की है। जो लोगों ने नहीं किया उनको आचार्य माना ही नहीं गया। तो उसमें पहले सूत्र में उन्होंने लिखा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है, किसको कहते हैं, परब्रह्म जन्मादश्य जतः, जिससे जो जन्म सृष्टि और स्थिति लय का कारण होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। उसी से जन्म होता है, उसी से स्थिति हमारी है, और उसी में हम लोगों का अंत में प्रलय में लय हो जाता है, वो है ब्रह्म। उसका रूप है, कुछ लोग उसको निराकार निर्विशेष मानते हैं, यह गलत है। कोई लोग ऐसे हैं भारतवर्ष में ही जन्म ग्रहण किए जो भगवान की इन मूर्तियों को नहीं मानते, अपने को आर्य समाज ही कहते हैं, किंतु अनार्य की हद है, सीमा है, आर्य नहीं है। हमारे सनातन धर्म की मूल है जब उस ब्रह्म का रूप है, जब उसका रूप नहीं थे ये जगत का रूप, ये जो हम देखते हैं कहां से आया, हम लोग कहां से आए, थोड़ी सी भी विचार बुद्धि जिनकी है वो इस चीज को विचार करेंगे कहां से आया। कॉज एंड एक्शन थ्योरी, सत्कारणवाद, इसको फिलॉसफी में दर्शन शास्त्र में कहा गया है। सब चीजों का कारण होता है, एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसका कारण नहीं है, वो कौन है, सर्व कारण कारणम, क्या है वो श्लोक, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है, बाकी जितने भी चीजें हैं उसके अतिरिक्त, पर ब्रह्म के अतिरिक्त सब का कुछ कारण है। यह जगत कहां से आया पहले बतलाया, पर ब्रह्म से आया। जब इतने जगत में रूप देखे जा रहे हैं, जब उनसे आए तो उसमें वो रूप होगा कि नहीं, क्योंकि सबका कारण है, कारण ही नहीं है तो कार्य में कहां से आएगा। बहुत से बीज हैं, इमली का बीज, आम का बीज, नीम का बीज और सब पेड़ों के बीज हैं। बीज से वो पूरा वृक्ष निकलता है, उसमें फल फूल, ये मीठे आम के बीज का मीठा वृक्ष होता है, उसके मीठे फल निकलते हैं, खट्टे का खट्टा, उसके बीज ही में वो चीज है। देयर इज सम पोटेंसी इन हिज सीड, इसी को कारण कहते हैं। तो जो समस्त कारणों के कारण में ही रूप नहीं है, तो ये जितने जगत में रूप देखे जाते हैं आए कहां से। कुछ लोग हैं भगवान को, गॉड को निराकार करते हैं, जी ओ डी, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रक्टर, यही हुआ स्थिति, सृष्टि स्थिति और प्रलय। तो जो ये करते हैं उनको गॉड कहते हैं। यदि उनके पुत्र जेसस क्राइस्ट है ना, उनके पुत्र, उनका यदि यह रूप है मनुष्य का, तो उनका बाप का कैसा होगा, कोई रूप नहीं होगा तो वो कहां से आ गए। यदि क्रिसस ये कहते हैं जेसस क्राइस्ट, उनका रूप है देखते हैं, तो उनका पोहता अपने बाप के समान ही तो होगा, बाप और मैया के समान ही संतान होती है, तो उनका बाप का कोई रूप ही नहीं है तो उनका रूप कहां से आया। इसलिए बाइबल में यह लिखा है स्पष्ट, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, गॉड ने अपने रूप के समान में मनुष्यों को बनाया। यदि यह भूल है तो वो अपने बाइबल से काट दे तो नहीं काट सकते। इसलिए बाइबल नहीं माना है कि भगवान का गॉड का रूप है, वो क्या है, क्राइस्ट कहां से आया, क्रिस्ट से, क्रिस्ट से कहां से आया, कृष्ण से, कृष्ण क्रिस्ट, ये उड़ीसा में अभी भी उनको क्रिस्ट क्रिस्ट को कृष्ण कृष्ण कहते हैं, उससे क्रिस्ट, क्रिस्ट से क्राइस्ट, क्राइस्ट ये आया उससे। इसलिए ये सभी बातें ठीक हैं विचार करके। हमारे कुछ मुस्लिम भाई लोग भी खुदा का रूप नहीं मानते, मंदिरों को नष्ट करते हैं। हमारे गजनवी जी गोरी आया और हमारे मंदिरों का ध्वंस करके सोमनाथ और कहां कहां, और उसको लूट करके सोमनाथ और क्या क्या जवाहराते ले गया, सोचा जी हमने तो अब इनको मार ही दिया। उन्होंने कहा जे पत्थर की मूर्ति की जरूरत नहीं है, ये भगवान नहीं है। इस प्रकार से उन लोगों का विचार है, किंतु उनका कुरान भी कहता है इन्ना लहा खलाका मैन सूरत ही, ये फारसी शब्द है, सूरत माने रूप, खुदा तल्ला ने अपने रूप के समान में मनुष्यों को बनाया। तो उनके बाइबिल में भी तो यह है जो हमारा वेद कहता है सत्यैव सम्य इदम् अग्र आसीत्। इसलिए भगवान का रूप है, जो लोग भगवान का रूप नहीं मानते, उनका यह विग्रह नहीं मानते, वो लोग नास्तिक हैं। उनका स्पर्श किया हुआ पानी भी हमारे हिंदू समाज में नहीं चलता। बोलने की सबको छूट है इसलिए बोल तो रहे हैं। जिन घरों में हम देखते हैं कि आर्य समाजी लोग, उनकी सारी स्त्रियां बच्चियां और बच्चे सभी भगवान की आराधना करते हैं, मूर्तियों के पास में जाते हैं। उनको चिढ़ है इस बात से। एक कोई थे, इसके नाम कहने में भी मुझे आपत्ति नहीं, दयानंद सरस्वती जी। बचपन में गए उनके मैया बाप शिव की पूजा करने गए, तो शिव जी के ऊपर में इन लोगों ने केला और गुड़ और ये सब चीज चढ़ाया, और चूहे दो उछल कूद करके उनके ऊपर में बीट भी टट्टी भी कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं। तो उनके मंदिर में मन में आया, अरे ये शंकर यदि अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता है तो दूसरों को क्या दे सकता है। इसने कहा ये बेकार की चीजें हैं मूर्ति पूजा, इसको छोड़ो हटाओ। किंतु उनके दिमाग में ये नहीं आया, अरे चूहा भी तो शंकर जी का ही संतान है, हमारा संतान, हमारी संतानें यदि सिर पर टट्टी कर दे गोदी में मैया के पिता के, तो पिता क्या करता है? उसे प्रसन्न नहीं होता है, उसे धो धा करके साफ कर देता है। किसी का बेटा गोद में बैठा है, वो उसकी दाढ़ी को नोच रहा है, ऐसे ऐसे मैया को ऐसे नोच रहा है, तो मैया उसे मारेगी क्या? नहीं। तो उनको ये पता नहीं है ये सारी विश्व सृष्टि करने वाले उन्हीं की संतान हैं, उनको प्यार करते हैं इसलिए नहीं मारते हैं। समझ में नहीं आया, इसलिए भगवान का रूप है। इसलिए हमारे ठाकुर जी वृंदावन में एक थे और गए दक्षिण में, राजमहेंद्री है, वहां से हजारों माइल दूर, और किसी भक्त की साक्षी देने के लिए बात की, और वो पैदल गए वहां। बहुत लंबा इतिहास है इसलिए नहीं कर रहा। वृंदावन में राधा गोविंद जी हैं, गोपीनाथ मदन मोहन हैं। मदन मोहन बच्चों के साथ में खेलते थे, और उनके साथ में बोले जी हमें वृंदावन में ले चलो अपने पास में। कहा जी भाई मैं कैसे ले जाऊंगा इतना भारी, तो तुम ले चलो मैं पैदल चलूंगा, उनके पीछे पीछे पैदल। इसका भी बहुत इतिहास है। गोविंद जी हैं जयपुर में, उनकी भी लंबी इतिहास है। सब लोग बोलते हैं चलते हैं अपने भक्तों के साथ। इसलिए ये विग्रह जो नहीं मानते हैं वो उपाशंड हैं, वो नास्तिक हैं, वो सनातनी नहीं हैं। इसलिए इसको साबित करने के लिए कृष्ण स्वयं आए, रामचंद्र जी स्वयं आए, और आकर के कृष्ण ने क्या किया, बड़ी मधुर मधुर लीलाएं की। देखो हमारा रूप है, बतलाया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अंगुली दिखला के मामेकम। वो जो बोलने वाला था वो निराकार था या उसका रूप था? बोलने वाला उसका तो रूप था ना, वो मैं हूं, मेरे शरणागत हो। गीता मने प्रतिज्ञा करके तीन तीन बार माम एव जे प्रपद्यन्ते माम इताम तरंती, माम एव, ये जो देख रहे हैं मुझे, मैं कृष्ण हूं। यही सब कारणों का कारण है, स्वयं भगवान हूं। माम एव जे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागत होता है वही माया को तर सकता है, दूसरा नहीं तर सकता। इसी तरह से और भी माम ओम का गीता में, शास्त्रों में, भागवत में उल्लेख। इसलिए श्री विग्रह को प्रणाम करने से, इनके शरणागत होने से सब सुनते हैं, शरणागतों की रक्षा करते हैं। ये मोहम्मद गुरी और गजनवी इत्यादि बड़ी बुरी तरह से मारे गए, हमारे ठाकुर जी तो अभी आए ही हैं। उन्होंने पत्थर समझा तो उनके लिए पत्थर ही बन गए। जो जैसा है करता है ना, ये जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो विग्रह में आ सकते हैं विग्रह से निकल के नहीं सकते, सब कुछ करने में समर्थ हैं, तो वो पत्थर समझा तो उनके लिए पत्थर हो गए। एक पत्थर को जो पत्थर शिला की रामचंद्र जी ने पैरों से स्पर्श कर दिया तो वो नारी बन गई नहल्या, ऐसी शक्ति रखते हैं ये भगवान। इसलिए विग्रह में ये भगवान का रूप है, ये हमारे यहां कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ये हिंदू धर्म में नाना प्रकार की देवताओं की उपासना है, नहीं हमारे यहां क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। मुस्लिम धर्म में क्रिश्चियनिटी धर्म में क्लास ही नहीं है, बस या करो या मारो, सब काफिर है दुनिया वाले, उनके कोई प्रश्न नहीं कर सकता, यहां प्रश्न किया बस मारो। एक केस है ये, यदि कहीं से ये किसका केस जिसके लिए बहुत नहीं नहीं बहुत पहले की बात है, वो किसी मोहम्मद की या उनका केस था, कहीं रखा था, वो कहीं इधर उधर चोरी चला गया, उसके लिए भारतवर्ष में क्या नहीं हो गया, क्यों हुआ, यही रूढ़ी बात है। हमारे यहां ऐसा नहीं, कोई कहता कि भगवान का रूप है साबित करो, हम लोग करेंगे। वृद्ध में कुछ भी बोल सकता है, उसके प्रश्न है उत्तर है और उसमें श्रेणियां हैं। जो अत्यंत तामसिक है उनके लिए दुर्गा की उपासना करो, बलि दी जाती है, अच्छा ठीक है वो इस प्रकार का नीच स्वभाव का तामसिक व्यक्ति है, अच्छा ठीक है वो भी भगवान की उपासना कर सकता है, अच्छे भगवान को अर्पण करो, दुर्गा के रूप में भले ही उनको करो, करो तो कुछ मानो तो सही, जो मानेगा ही नहीं फिर कैसे होगा। इसलिए पहली श्रेणी है तामसिक व्यक्तियों के लिए, तामसिक शास्त्र और तामसिक पूजा रखी गई जिसे वो राजसिक में आए, राजसिक लोगों के लिए क्रमशः इसको छोड़ करके फिर सात्विक में आओ, फिर सात्विक से निर्गुण में आओ और निर्गुण से अप्राकृत में आओ, ये कृष्ण का भजन निर्गुण से भी ऊपर अप्राकृत है। निराकार की उपासना जो नहीं देखी जाती उसको हम लोगों ने मान लिया, अच्छा अच्छा ठीक है उसको भी करो, ये निर्गुण उपासना। इस तरह से सबको सामंजस्य कर लिया, इसलिए हिंदू धर्म में सनातन धर्म में सीढ़ियां हैं, सोपान है और कहीं भी नहीं, क्रमशः तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, सात्विक से निर्गुण, निर्गुण से अप्राकृत, तब भगवान की सेवा में आए। बिना इनकी पूजा किए हुए ठाकुर जी की पूजा हुए, राधा कृष्ण का जो स्वरूप है इनसे कोई अंतर नहीं है। यदि गोलोक वृंदावन में या अयोध्या साकेत में जाएंगे तो देखेंगे यही, कोई अंतर नहीं, यहां बोल नहीं रहे वहां पर बोलेंगे। इस विश्वास के साथ में भजन करना चाहिए, ये सनातन धर्म है भगवान के प्रति प्रेम। हम अब कुछ कृष्ण की लीलाओं के तरफ में अब आ रहे हैं। बोलना तो चाहता था राम की भी बहुत सी कथाओं को, दोनों एक ही है, किंतु अब आज और कल दो दिन हैं। आज राम की कुछ कथा में चलते हैं, कल परसों। कल मैंने बतलाया था कृष्ण के अवतार का कारण, जब भगवान भी जीवों से इतना प्रेम करते हैं उनके लिए छटपट आते हैं वहां से उतरते हैं। ऐसा मत समझिए कि कृष्ण और राम का कोई रूप नहीं है, जब उतरते हैं तो मनुष्य का शरीर धारण कर लेते हैं, ऐसा नहीं, उतरते हैं अतः तो है वही रूप, वहां से उतरते हैं इसलिए उनको अवतार कहते हैं। कृष्ण जी मथुरा में जन्मे ऐसा मालूम पड़ता है, किंतु श्रीमद् भागवत को अच्छी तरह से देखने से, उसके जो मर्मज्ञ टीकाकार हैं उनके विचारों को देखने से ऐसा पता चलता है कि कृष्ण आंशिक रूप में मथुरा में प्रकट हुए, अपूर्ण रूप से गोकुल में जसोदा मैया के गर्भ से निकले। यहां पर जब हुए, जैसे महाराज रामचंद्र जी भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, फिर चतुर्भुज रूपधारी चार रूप दिखलाए, और मैया हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करने लगी, ये भगवान है, उनका पुत्र जैसा प्रेम नहीं रहा, भगवान मान करके स्तव स्तुति करने लगी। अपने बेटा को कोई स्तव स्तुति करता है? और उन चार भुजाएं वाला शंख चक्र गदा पद्म धारण करके और यहां पर मुकुट इत्यादि धारण करके प्रकट हुआ। उसी तरह से वहां पर कंस के जेल खाने में देवकी के गर्भ से हुए पैदा होते हैं, कैसे पैदा हुए, आविर्भूत हुए, मैया के साथ में कुछ लगा रहता है, वो नहीं था, जिसको नाड़ी कहते हैं, नाड़ी छेद नहीं हुआ, वो संस्कार यहां पर मथुरा में नहीं हुआ, ये कहां हुआ, गोकुल में हुआ नाड़ी छेद, उत्सव वहां पर बधाइयां बजी, यहां पर बधाइयां नहीं बजी, दान पुण्य ही वहीं पर हुए गोकुल में। गोकुल में लोगों ने देखा मैया के साथ में कृष्ण का जो बच्चे पैदा हुए, छोटे से, चतुर्भुज नहीं, जैसा बच्चा पैदा होता है, नाइन आई और उसने नाड़ी छेद किया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, उन्होंने स्वस्तिक वाचन इत्यादि किए, उसका स्नान कराया गया जसोदा जी को और लड़के को, नवजात शिशु को। इसलिए ये पूर्ण रूप से जन्म कहां हुआ, मधुर लीलाएं कहां हुई, इसलिए नंद नंदन है जसोदा और नंद बाबा के ये बेटे हैं, ये बेटा नहीं कर सकते ना? देवकी और वसुदेव जी बेटा कहेंगे, हाथ जोड़ करके खड़े हुए स्तव स्तुति कर रहे हैं। इसलिए समझो, मथुरा वाले भले ही कह सकते हैं कि ये वसुदेव जी के और देवकी के पुत्र हैं, किंतु ब्रजवासी कोई कहेगा जो कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं? नहीं कह सकता। उन्होंने देखा जसोदा का गर्भवती थी और उससे दो बच्चे पैदा हुए, पहला बच्चा कौन पैदा हुआ, कृष्ण, और उसके 10-20 मिनट के बाद ही में जोग माया उनकी बहन पैदा हुई, यही जोग माया जी उत्पन्न जमज पुत्र हुए। इसका सब शास्त्रों में उल्लेख है, हरिवंश में, निगम में, आगमों में इसका उल्लेख है, और जसोदा जी का एक नाम देवकी था, इसलिए देवकी नंदन भी कह सकते हैं। इसलिए कृष्ण के ही पूर्ण रूप में पुत्र थे जसोदा देवी के, और देवकी के आंशिक रूप में नारायण तत्व थे, नारायण तत्व से भी कृष्ण तत्व कुछ विशेषता रखता है, नारायण कृष्ण राम ये सब एक ही हैं, कृष्ण ही के ही प्रकाश हैं, तो भी नारायण का बाप मैया नहीं हो सकता, नारायण का कोई बाप मां है, उसका भैया कोई है नहीं, वैदिक रीति से उनका किसी से विवाह है नहीं है, इसलिए वो कुछ अलौकिक हैं। नारद भी देखेंगे, लक्ष्मी भी उनको पैर पलोटेंगी, कभी लक्ष्मी जी को मान करते देखा, कहीं सुना नहीं, कर सकती, अब बिना मान के घर में, अरे जब बर्तन धोए तो ठक ठक आज तो होंगे ही, ये सब ब्रज में कृष्ण की लीला में देख सकते हैं, इसलिए नारायण में अढ़ाई रस ही माना गया, शांत रस है, शांत एकदम शांत प्रशांत रहते हैं, वो श्लोक क्या है ना, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये देखो ना, शयन करते हैं, दक्षिण के मंदिरों में विशेष करके लंबे भुजग आसन पर, शेषनाग पर महा ये सब शयन किए हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रहे हैं। इसलिए ये जो जदुनंदन है, कृष्ण जो यहां पर पैदा हुए वो नारायण तत्व है, और ब्रज में जो है माधव जी की सीमा, कभी यशोदा जी कान बैठती हैं, कभी नारद जी वहां आते हैं, देखते क्या है ये कृष्ण मन्नी मिट्टी में लोट पोट रहे हैं, रो रहे हैं मैया मैया मैया, और यशोदा जी ऐसे हाथ करके खड़ी हैं, मैया मैया मत करो मत रो, तुम्हें गोदी नहीं लूंगी, गंदे लड़के हो, झूठ बोलते हो, लोगों के घर में चोरी करते हो, खबरदार, बंदर बंधु, बंदर का बंधु तुम है, इस तरह से कर रही हूं। किसको कर रही है? परब्रह्म को। नारायण को ऐसा कोई कर देगा? नहीं कर सकता। यहां तक कि गोपियों की चरणों में निहोरा करते हैं, अपने सिर को झुका करके निहोरा करते हैं, तुम्हें क्षमा कर दो, फिर ऐसा नहीं करूंगा। ये कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं, इसलिए गोकुल में बधाइयां बजी, मिठाइयां बटी, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल, हाथी घोड़ा पाल की, नंद को आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो। तो इस तरह से नंद में वहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ। और भी इसमें विशेष बातें हैं, कृष्ण ने मथुरा में कंस कारागार में जब जन्म लिया, जन्म लेते ही उन्होंने कहा जो देखो यहां पर कंस सुनेगा तुमको और भी कष्ट देगा, इसलिए मुझे गोकुल में पहुंचा दो। गोकुल में पहुंचा देने के लिए कह करके और क्या गया, हाथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे पर जो खड़े थे संतरी वे लोग सो गए, और कपाट लोहे का खुल गया, वर्षा होने लगी खूब, पहले तो रिमझिम और फिर बड़ी जोर से जो कोई घर से निकल नहीं पाए, और इस तरह से वसुदेव जी उनको अपनी गोदी में लेकर के सूप, सूप जानते हैं फटकने का, उसमें ले लिया और बैठा करके लेकर के चले। जमुना में पानी के वजह से, वर्षा के वजह से भयंकर बाढ़ आ रही थी, बहुत तीव्र धारा थी, भावरे उसमें चल रही थी, पार करना बड़ा भारी कठिन था, कैसे पार करूं? देखा एक श्रीगाल नदी को पार कर रहा, ओ इतना ही पानी है, बस आगे आगे श्रीगाल पीछे से ये चल पड़े। जब बीच में पहुंचे तो जमुना जी ने सोचा जिनके चरण कमल हम तो पखार लें, फिर कभी समय मिलेगा कि नहीं, अब आए हुए सूर्य को कौन छोड़े, इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये कृष्ण को उठाने लग गए, जितना उठा रहे हैं उतना ही जमुना नदी बढ़ रही है। जब इतना तक पानी आया तो कृष्ण ने सोचा जब पिताजी को कष्ट होगा, तो उन्होंने पीछे से पैर को जरा लंबा करके जमुना जी को स्पर्श करा दिया, बस जमुना जी एकदम नीचे उतर गई, और इसके बाद में उनको गोकुल ले गए। सब लोग सो रहे हैं, यशोदा जी भी सो रही हैं, वहां पर कृष्ण जो सोए हुए थे बच्चे जो छोटे से, इन वसुदेव जी को अपने अंदर में लेकर के क्रोड़ीभूत कर लिया, अर्थात तो दोनों मिलकर के एक हो गए, अंशपूर्ण में मिल गया, जो नारायण तत्व था वो कृष्ण में मिलकर के एक हो गया, और उसी को वहां रख करके और दूसरी जो बेटी हुई थी बेटी को उठा ले आए। जब तक उनके साथ में थी वो बेटी तब तब तक योग माया थी, और वही जब कंस ने देखा कंस को मालूम पड़ा। यहीं वसुदेव जी लौट करके कंस कारागार में आए, उनकी हथकड़ी बेड़ी अपने आप फिर लग गई, लौह कपाट सब अपने आप बंद हो गए, संतरी लोग उठ गए, वर्षा भी समाप्त हो गई। देखा जैसे यहां पर बच्चा रो रहा है जेल खाने में, उसके संतरियों ने दौड़ करके कहा, अरे देवकी को कुछ हुआ है संतान। सुनते ही बाल बिखर रहे थे, केश बिखर रहे थे, जूता भी नहीं पहन सका, जल्दी से तलवार लेकर और गदा लेकर के दौड़ करके भीतर आया। जब गया देखा तो उसे उसकी गोदी में, उसकी बहन की गोदी में एक छोटी सी बालिका है। झट उसको पकड़ लिया उसके पैर और उसको मारना चाहा पटक करके। देवकी ने कहा, जी भैया अब तक मैंने किसी पुत्र के लिए तुमसे नहीं कहा, किंतु ये बेटी के लिए हमारी रक्षा करो। अरे तुम्हारी तुम्हारा लड़का होगा उस समय इसका विवाह दे दूंगी, और तुम्हारे मारने वाला तो लड़का की बात थी, ये लड़की है इसको छोड़ो। किस लिए? इसलिए कि उसके बदले में ले आए हैं ना, तो जब तक कि लड़की को लौटाएंगे नहीं तो उसके ऊपर अधिकार कैसा होगा, ये मेरा बेटा है। समझ रहे मैंने क्या कहा? उन लोगों के लिए कह रहा। वसुदेव जी लड़के को देख करके लड़की ले आए हैं, तो लड़की को यदि लौटाएंगे तब तो उनका अधिकार होगा, नहीं तो उस पर अधिकार कैसे होगा? कहेंगे जी बेटा तुम हम यहां रह जाओ। इसलिए चाहती थी जो किसी प्रकार से, ये दूसरे की लड़की है यशोदा की, किस प्रकार से इसकी रक्षा करे, किंतु माना नहीं। उनको दोनों पैर पकड़ करके और ज्यों ही घुमा करके पत्थर पर मारना चाहा, हाथ से निकल गई और देखा अष्टभुजा दुर्गा, उसी की कुल देवी, और उसके सिर में ऐसे हल्के से एक ठोकर दिया जो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। देखा ये हमारी कुल देवी। उन्होंने कहा तू क्या मारेगा उसे, जन्म उसने ले लिया। और ये कहती हुई वो सिंहवाहिनी दुर्गा जी अष्टभुजा वाली, और ये वहीं से फिर लुप्त हो गई। फिर वह मथुरा में कंकाली के रूप में है, विद्याचली के नाम से है, दुर्गा के नाम से है, सिंहवाहिनी के नाम से है, बहुत इनके नाम हैं, और लोग उनकी पूजा करके और आराधना करके बहुत से लौकिक वर मांगते हैं। किंतु वही क्या है, छाया है, असल कौन है? जोग माया है। और वो जोग माया कौन है? राधिका जी जोग माया की भी मूल है, वही सीता जी हैं, और उन्हीं की छाया ये दुर्गा काली है। संसार की चीजों को देगी, कृष्ण का प्रेम देगी तो वो जोग माया के रूप में देंगी, इसलिए उनकी आराधना यह भी सनातन धर्म है। इसी की प्रतिष्ठा के लिए कृष्ण आए। कल और सुंदर इससे उनकी कुछ लीलाओं का वर्णन करूंगा। हमारे बाद भी यहां पर कौन को बोलेगा? महाराज आश्रम महाराज कहां गए? आश्रम वेयर ही? तो आश्रम महाराज जी हमारे बाद में अभी कथा प्रारंभ रखेंगे, 9 बजे तक कथा होगी। लोगों की इच्छा है जी 9 बजे तक हो, तो 8:30 तो बजी गया है, और 30 मिनट तक कुछ हरी कथा बोलेंगे, और वो यदि नहीं है तो ये कह सकते हैं हमारे आ गए हैं, हाँ तो वही कुछ कथा बोलें। तब तक एक महामंत्र अथवा वो जो है जाइए कीर्तन कर रही है। ओ कुछ जय कुंज भी है।
10 ants declass on the evening of the 31st of January 2002 in Auckland. Hare Krishna.